कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला और शान ने कमरे में कदम रखा और निगाहें बेड की तरफ घुमाई तो आरवी एक बार फिर अपनी नॉवल पढ़ने में लगी थी। उसका चेहरा एकदम शांत था। उसको इतना सामान्य देखकर शान को कुछ अजीब लगा। तभी उसकी नज़र आरवी के हाथ में पकड़ी नॉवल पर पड़ी और उसकी सारी गलतफहमी एक पल में दूर हो गई। इसके साथ ही लबों पर हल्की मुस्कान फैल गई, जिसे उसने जल्दी ही छुपा लिया और आरवी की तरफ बढ़ गया। शान के हर बढ़ते कदम के साथ आरवी की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थीं। वो भले ही दिखा रही थी कि उसका सारा ध्यान बुक पर है, पर सच तो ये था कि बस उसकी निगाहें ही उस नॉवल पर टिकी थीं, बाकी दिल और दिमाग दोनों ही शान पर अटके हुए थे। वो बड़ी ही मुश्किल से खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी, जबकि सच तो ये था कि घबराहट के मारे उसका बुरा हाल होता जा रहा था। शान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आरवी की धड़कनें बेतहाशा धड़कने लगीं। उसने निगाहें बुक पर गड़ा ली, पर अचानक ही शान ने उसके हाथ से बुक ले ली तो आरवी सवालिया निगाहों से उसको देखने लगी। शान ने तो उसे देखा ही नहीं, उसने बुक को पलटते हुए कहा, मुझे आज पहली बार तुम्हारे इस हिडन टैलेंट के बारे में पता चला है एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। आरवी उसकी बात का मतलब समझ ही नहीं सकी और हैरान परेशान सी उसको देखने लगी। शान ने अब बुक वापस उसके हाथ में थमा दी और कुटिल मुस्कान लबों पर सजाते हुए आगे बोला, वैसे मैं पूछना तो भूल ही गया, उल्टी बुक पढ़ना सच में तुम्हारा टैलेंट है या जल्दबाजी में तुम्हें ध्यान नहीं रहा कि बुक सीधी नहीं उल्टी पकड़कर बैठी हो। आरवी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने बुक की तरफ देखा तो अब वो सीधी थी, मतलब शान के आने की आहट पाकर उसने हड़बड़ाहट में बुक उल्टी उठा ली थी और उसको पता ही नहीं चला, जबकि शान ने सब देख लिया और उसकी चोरी बड़ी ही आसानी से पकड़ ली। शान ने उसके हैरानी भरे भाव देखे तो बेड पर हथेली टिकाते हुए एक बार फिर उसके ऊपर झुक गया। आरवी तुरंत हड़बड़ाहट में पीछे होने लगी और इसी चक्कर में बेड पर जा गिरी और घबराहट में आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देखने लगी। शान ने उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए तिरछी मुस्कान के साथ कहा, तो मेरी दूसरी बात ही सच है, गलती से उल्टी बुक पढ़कर बैठी थी तुम। वैसे ध्यान कहाँ था तुम्हारा जो होश ही नहीं रहा कि उल्टी बुक में आंखें गड़ाए बैठी थी। लगता तो है कि मेरे ही ख्यालों में गुम थी, सही कहा ना मैंने? उसने शरारत से मुस्कुराते हुए अपनी आई विंग की और आरवी ने हड़बड़ाहट में उस पर से अपनी निगाहें हटाते हुए धीमी आवाज में कहा, देखिए जैसा आप। आरवी की जुबान भी आज उसका साथ नहीं दे रही थी। उसने अटकते हुए किसी तरह इतना कहा ही था कि शान ने उसके लबों पर अपनी उंगली को रखकर उन्हें खामोश कर दिया। आरवी की घबराहट भरी निगाहें एक बार फिर शान की तरफ उठ गईं। शान बिना कुछ कहे आरवी के चेहरे की तरफ झुकने लगा और धीरे धीरे आरवी की पलकें झुकने लगीं और कुछ ही पल में बंद हो गईं। शान ने उसके घबराहट भरे चेहरे को देखा, फिर हौली से उसके माथे को अपने लबों से छू दिया। तुम्हारी माँ की फ़ोटो को ठीक करवाने के लिए दे दी है, एक दो दिन में आ जाएगी, और तुम्हारे पापा के बारे में भी पता करवाना शुरू करवा दिया है, पर एक बार फ़ोटो आ जाए तो उन्हें ढूंढना आसान हो जाएगा, जल्दी ही तुम्हें तुम्हारी असली पहचान पता चल जाएगी। आरवी के कानों में उसके कहे शब्द पड़े तो उसने झट से अपनी आंखें खोली, पर शान उसको कहीं नजर ही नहीं आया। वो झट से उठकर बैठ गई और निगाहें घुमाई तो शान अपनी बात कहकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गया था। आरवी एकटक जाते हुए शान को देखने लगी। अचानक ही उसके कानों में शान की आवाज़ पड़ी, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? उसका सवाल सुनकर आरवी ने हड़बड़ाहट में उस पर से निगाहें हटाते हुए कहा, आपको कैसे पता चल जाता है, आपके क्या पीछे भी तो आंखें लगी हैं? उसकी बात सुनकर शान की भौहें तन गई। वो आरवी की तरफ पलटा और उसको घूरते हुए बोला, तुम्हारा मुझे नहीं पता, पर आमतौर पर जब कोई किसी को घूर कर देखता है तो उस इंसान को खुद ही फील होने लगता है कि किसी की निगाहें एक टक उसे ही घूरे जा रही हैं, उसके लिए पीछे आंखों के होने की जरूरत नहीं होती। और यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि तुम ही मुझे घूर रही होगी। मैं आपको घूर नहीं रही थी, आरवी ने तुरंत ही सफाई दी, जिस पर कुछ पल शान उसको घूरता रहा, फिर गंभीरता से बोला, कुछ कहना है तो जल्दी कहो, ज्यादा फालतू वक्त नहीं है मेरे पास, खासकर तुमसे बहस करने के लिए तो बिल्कुल नहीं। आरवी मुंह बनाकर कुछ पल उसको घूरती रही, फिर जब शान ने उसको बोलने को कहा तो कुछ परेशान लहजे में बोली, मैं सोच रही थी कि माँ पापा का घर छोड़कर चली गई थी, पापा ने उन्हें धोखा दिया, मतलब हो सकता है कि वो अच्छे इंसान नहीं है, तो अगर आगे पता चला कि मेरे अंदर जिसका खून बहता है वो एक बुरा इंसान है तो आप मुझसे नफरत करने लगेंगे। आरवी की आंखों में इस वक्त खौफ नजर आ रहा था और चेहरा एकदम गंभीर था। शान को उससे ऐसे किसी सवाल की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो कुछ हैरान परेशान सा उसको देख रहा था, पर जब उसने उसकी आंखों में कैद डर को देखा, जो शायद उसको खोने का डर था, तो शान ने खुद को नॉर्मल करते हुए आराम से कहा, तुम मेरी वाइफ हो और अब इस सच को कोई दूसरा सच नहीं बदल सकता, तुम्हारे रगों में किसका खून बहता है और किसका नहीं इससे मुझे कोई फर्क पड़ता, मुझे फर्क सिर्फ तुमसे पड़ता है। हो सकता है तुम्हारे पापा अच्छे इंसान ना हो, पर तुम्हारी माँ अच्छी थी और तुम अपनी माँ पर गई हो क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारी रगों में किसका खून बहता है, उस खून में आंटी की परवरिश का रंग घुला हुआ है, और उनकी परवरिश पर मैं कभी सवाल नहीं उठा सकता, इसलिए तुम्हें इन बकवास बातों के बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने ना कहा होता तो मैं तुम्हारे पापा के बारे में पता करवाने की कोशिश भी ना करता, क्योंकि मुझे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि किसका खून तुम्हारी रगों में बहता है। मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम बहुत अच्छी हो, मेरी वाइफ हो, और इस सच्चाई के आगे बाकी किसी सच्चाई का कोई वजूद ही नहीं है। शान की कही बातों ने काफी हद तक आरवी के मन के डर को खत्म कर दिया था, पर अब भी उसको कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे उसकी असली पहचान उससे सब कुछ छीन लेगी। उसने बेचैन निगाहों से उसे देखते हुए कहा, मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं करवाना, बस आप मुझे मेरी माँ की तस्वीर सही सलामत लाकर दे दीजिए। शान उसको इस कदर बेचैन देखकर परेशान हो गया और उसके पास चला आया, फिर प्यार से उसके गाल को छूकर बोला, क्या हुआ है आरवी, इतनी रेस्टलेस क्यों हो तुम? आरवी ने बेचैन निगाहों से उसे देखते हुए कहा, पता नहीं, जब जब उनका जिक्र आता है तो मुझे बहुत अजीब सा महसूस होने लगता है, जैसे उनकी पहचान मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगी। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं जानना, मेरे लिए मेरे माँ पापा वही हैं जिन्होंने मुझे पाला है, उनके अलावा मेरा किसी से कोई नाता नहीं, प्लीज आप उनके बारे में कुछ पता मत कीजिए, मुझे नहीं जानना कुछ भी। आरवी को इतना परेशान देखकर शान ने प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं उनके बारे में कुछ पता नहीं करूंगा, बस तुम शांत हो जाओ और अपने दिमाग से इस डर को हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो कि तुमने तुम्हारी खुशियों को कोई छीन पाएगा, क्योंकि मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। शान ने इतनी दृढ़ता से कहा कि आरवी एकटक उसकी आंखों में देखने लगी, फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे उसके सीने से अपना सर लगा लिया। शान ने भी उसको अपनी बाहों में भर लिया। धीरे धीरे आरवी की सारी बेचैनी और डर खत्म होने लगा। कुछ देर बाद शान ने उसको खुद से अलग किया और नीचे लेकर चला गया। कुछ देर सभी ने बैठकर बातें की, फिर डिनर के बाद अपने अपने कमरे में चले गए। आरवी की जगह श्याम सुभाष जी का ध्यान रख रहा था।